नमस्कार शिक्षार्थियों, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे विषय जनसंचार पाठ 8 भारत में भाषाई प्रेस के बारे में बात करूंगा, जिसके तहत हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में प्रेस की शुरुआत कब हुई और भारत में भाषाई प्रेस का भविष्य क्या रहा। तो आइए शुरू करते हैं आज का पाठ। भारत में समाचार पत्र प्रकाशन के विषय में आपने और हमने सभी ने पढ़ा होगा, लेकिन यह जानना बहुत जरूरी है कि भारत में गुजराती दैनिक मुंबई समाचार, जो सन 1822 में मुंबई से प्रकाशित होना शुरू हुआ था, देश का सबसे पुराना अखबार रहा है। हमने सांस्कृतिक पुनर्जागरण और स्वतंत्रता आंदोलन के विषय में भी जानकारी ली है, जिसके कारण भाषाई समाचार पत्रों का विकास हुआ। जी हाँ, भाषाई समाचार पत्रों की अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता आंदोलन के तहत इनका जन्म हुआ और इनका विकास उस समय बहुत ज्यादा हुआ। भारत के समाचार पत्रों को मूलतः दो भागों में बांटा जाता है, एक अंग्रेजी के समाचार पत्र और दूसरे भाषाई समाचार पत्र। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि अंग्रेजी पत्र अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होते हैं, ये मुख्यतः महानगरों तथा शहरों से प्रकाशित होते हैं, लेकिन यह इस बात पर भी सुनिश्चित होता है कि विशेष जगह स्थान में लोगों की शिक्षा का स्तर क्या है। अगर लोगों के शिक्षा का स्तर ऊंचा है तो वहां पे अंग्रेजी समाचार पत्रों की मांग उतनी ही होगी जितनी की हिंदी के समाचार पत्रों की होती है। आइए जान लेते हैं कि हम इस पाठ के दौरान किन उद्देश्यों को पूरा करेंगे। सबसे पहला उद्देश्य है, हम यह जानेंगे कि अंग्रेजी और भाषाई पत्रों के बीच अंतर क्या है। दूसरा, भारत में भाषाई पत्रों के इतिहास का वर्णन करने की कोशिश करेंगे, भाषाई पत्रों की भूमिका की व्याख्या भी करेंगे और समाचार एजेंसियों की पहचान एवं अंत में फ्रीलांसिंग, कार्टूनिंग व पुस्तक प्रकाशन विषयक समझ को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम अध्याय के पहले शीर्षक की तरफ बढ़ते हैं, जो है भाषाई समाचार पत्रों की परिभाषा। आखिर भाषाई समाचार पत्रों की परिभाषा क्या है, यह जानना बहुत जरूरी है। भाषाई समाचार पत्रों का अर्थ है देश में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्र। इन्हें क्षेत्रीय अखबार भी कहते हैं। भारत में 100 से अधिक भाषाओं में भाषाई समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं, लेकिन प्रमुख समाचार पत्र 16 मुख्य भाषाओं में ही प्रकाशित होते हैं। शैली, प्रस्तुतिकरण तथा विचार के लिहाज से भाषाई पत्र अंग्रेजी पत्रों से अलग हैं। अब हम चलते हैं अपने दूसरे शीर्षक की ओर, जो है अंग्रेजी समाचार पत्रों तथा भाषाई पत्रों में अंतर। पहला बड़ा अंतर है, अंग्रेजी पत्र मात्र एक भाषा अंग्रेजी में ही प्रकाशित होते हैं, जबकि भाषाई अखबार विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित होते हैं। दूसरा, अंग्रेजी पत्र अधिकतर शहरों व महानगरों से ही निकलते हैं तथा प्रकाशित होते हैं, भाषाई पत्र देश भर से प्रकाशित एवं प्रसारित होते हैं। अंग्रेजी पत्र मुख्यतः सुशिक्षित मध्य वर्ग, उच्च मध्य वर्ग तथा उच्च आय वर्ग के लिए लक्षित होते हैं, जबकि भाषाई पत्रों को निम्न मध्य वर्ग तथा उनके बीच के लोग भी पढ़ते हैं। तीसरा, अंग्रेजी दैनिकों का अभिगम ग्रामीण जनता के बीच नहीं है, जबकि भाषाई दैनिक ग्रामीण क्षेत्रों तक बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। अंग्रेजी पत्र ब्रिटिश परंपरा का पालन करते हैं, जबकि भाषाई पत्रों ने अपनी पद्धति तथा शैली विकसित की है। अंतिम, क्योंकि अंग्रेजी पत्र अच्छी क्रय शक्ति वाले पाठकों के बीच प्रकाशित होते हैं, इसीलिए यह विज्ञापनों से अधिक धन प्राप्त करते हैं, जबकि भाषाई पत्रों को विज्ञापन से इतना धन नहीं मिल पाता। और एक अन्य बात, अंग्रेजी पत्र अधिक रंगीन तथा आकर्षक होते हैं, जबकि भाषाई पत्र साधारण शैली अपनाते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले शीर्षक की ओर, जो है भारत में भाषाई समाचार पत्रों का विकास। आइए इस पर चर्चा करते हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय देश में मात्र 3533 प्रकाशन थे। इसमें से 330 दैनिक समाचार पत्र तथा 3203 आवधिक पत्र थे। 50 वर्षों के बाद प्रकाशनों की संख्या में 12 गुनी वृद्धि हुई। 1997 में भारत के पंजीयक समाचार पत्र द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार कुल 41,705 प्रकाशन थे, जिसमें समाचार पत्रों की संख्या 4,719 थी। वर्ष 2006 में यह आंकड़ा 3 करोड़ से पार कर गया और भारत में 398 प्रमुख समाचार पत्र थे। चीन के बाद भारत समाचार पत्रों का सबसे बड़ा बाजार है, जबकि यूरोप तथा अमेरिका में समाचार पत्र अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भारत तथा चीन में इनकी मांग उछाल पर है। यह जानना दिलचस्प है कि समाचार पत्रों की प्रसार संख्या के मुताबिक दुनिया के 3 सर्वोच्च देश 98.70 मिलियन प्रति प्रसार वाला चीन 88.90 मिलियन के साथ भारत तथा 69.10 मिलियन प्रसार संख्या के साथ जापान है। समाचार पत्रों की वृद्धि दर की गणना 2 तरीकों से की जाती है, एक प्रसार संख्या से और दूसरा पाठक संख्या से। तो भारत में भाषाई समाचार पत्रों के विकास से संबंधित इतना ही। आइए चलते हैं अपने अगले शीर्षक की ओर, जो है समाचार पत्रों की उछाल के कारण। भारत विश्व के सबसे तेज बढ़ने वाले मीडिया बाजारों में से एक है। ना केवल समाचार पत्र बल्कि अन्य प्रकार के माध्यम जैसे रेडियो, टेलीविजन चैनल व इंटरनेट भी भारत में तीव्र गति से वृद्धि कर रहे हैं। आइए अब हम कुछ ऐसे कारक जानने की कोशिश करते हैं, जिनसे यह पता चलता है कि भारत में समाचार पत्रों की वृद्धि हुई है। पहला, साक्षरता दर में वृद्धि होना। साक्षरता दर में वृद्धि होने से भी समाचार पत्रों की संख्या में वृद्धि हुई है, क्योंकि पढ़ने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। मध्य वर्ग का विस्तार। जैसे जैसे भारत का मध्य वर्ग विस्तृत होता जा रहा है, समाचार पत्रों की प्रसार संख्या भी बढ़ती जा रही है। जब एक घर में आर्थिक व शैक्षिक प्रगति होती है, वे इसे समृद्धि का प्रतीक समझकर समाचार पत्र खरीदने लगते हैं। अनछुए बाजार। भारत में अनुमानतः आज भी 350 मिलियन लोग ऐसे हैं जो लिख पढ़ सकते हैं, परंतु समाचार पत्र नहीं खरीदते। तथा देश का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां तक समाचार पत्र का प्रसार हो सकता है, लेकिन यह हिस्सा समाचार पत्र से दूर है। इस हिस्से को आमंत्रित करने के लिए अधिक से अधिक अखबार प्रयासरत हैं, यानी कि इस हिस्से तक अपनी पहुंच संभव करने के लिए सभी अखबार अपनी अपनी युक्तियां लगाए हुए हैं कि किस तरीके से इस पाठक वर्ग तक पहुंचा जाए। महिला शिक्षा। यह एक ऐसा पहलू है जिसने समाचार पत्रों की उछाल के लिए एक बड़ा स्तंभ साबित किया। महिला शिक्षा, प्रायः कहा जाता था कि यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप अगली पीढ़ी को भी शिक्षित करते हैं। भारत में महिलाएं अधिकाधिक संख्या में शिक्षित हो रही हैं और बच्चे भी शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके साथ जागरूकता भी बढ़ रही है, जिसका योगदान पाठक संख्या में वृद्धि से है। तकनीकी प्रगति। प्रारंभिक दिनों में एक नए संस्करण के अखबार का प्रकाशन खर्चीला मामला था, लेकिन जैसे जैसे तकनीक में सुधार हुआ, समाचार पत्रों के लिए नए संस्करण शुरू करना आसान हो गया। इससे छोटे शहरों व कस्बों में भी समाचार पत्रों का विस्तार हुआ। बेहतर क्रय शक्ति। आम आदमी की क्रय शक्ति में सुधार एक अन्य कारक है जिसने समाचार पत्रों को बढ़ने में मदद की। इसमें साथ ही समाचार पत्र अपना मूल्य घटाते गए, अतः इन्हें खरीदना आम आदमी के लिए आसान हो गया। आक्रामक मार्केटिंग। समाचार पत्र व पत्रिकाएं आक्रामक मार्केटिंग रणनीति अधिकाधिक पाठकों को आकर्षित करने के लिए अपना रहे हैं। वे पाठकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न योजनाएं तथा उपहार दे रहे हैं। वे दीर्घकालीन पाठकों को छूट भी देते हैं। इन सबके परिणाम स्वरूप समाचार पत्रों की बिक्री बढ़ रही है। और अंतिम, राजनीतिक जागरूकता। जैसे जैसे लोग राजनीतिक प्रगति के बारे में जागरूक हो रहे हैं, उनकी रुचि अखबार पढ़ने में बढ़ रही है एवं वे सभी लोग अखबार खरीद रहे हैं, जिससे अखबार की पाठ संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। हमारा अगला शीर्षक है भाषाई समाचार पत्रों का विकास। किस तरीके से भाषाई समाचार पत्रों का विकास हुआ? अब हम भारत में समाचार पत्रों के विकास के जिन कारणों को पढ़ा, लगभग वही समान रूप से भाषाई समाचार पत्रों के लिए भी लागू हैं। लेकिन कुछ अन्य कारक भी हैं जिनके चलते भाषाई पत्र बढ़े हैं। प्रारंभिक दिनों में भाषाई पत्रों को अंग्रेजी प्रेस द्वारा वर्नक्यूलर दैनिक समझा जाता था, लेकिन जब भाषाई माध्यम बड़ी शक्ति बनकर उभरे तो यह अवधारणा बदल गई। भारतीय अर्थव्यवस्था मूलतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, क्योंकि हमारी 60% से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में 16 करोड़ से अधिक गृहस्थियां ग्रामीण अंचलों में रहती हैं। पिछले 50 से 60 वर्षों में ग्रामीण आबादी में एक मानक परिवर्तन देखा गया। भारतीय कृषक, जिन्हें जन्मजात कर्जदार कहा जाता है, कर्ज में ही जीते हैं, कर्ज में ही मर जाते हैं, अब समाज में एक प्रभावशाली उपभोक्ता समूह बनकर उभर रहे हैं। उनके आय के स्तर में वृद्धि हो रही है तथा उनके साथ ही उनकी रुचि पसंद बदल रही है। ग्रामीण जनों के आधुनिक होने के परिणाम स्वरूप भाषाई अखबारों के प्रकाशन में भी वृद्धि हो रही है। अब हम अगले शीर्षक की ओर बढ़ते हैं, जिसमें भारत में प्रेस का अध्ययन है, यानी भारत में समाचार पत्र क्रमिक हमेशा से शोधकर्ताओं के अध्ययन का विषय रहा है और विभिन्न एजेंसियों ने इस क्षेत्र में कार्य किया है। अधिकांश अध्ययन दो विभिन्न अवधि में किए गए हैं, उपनिवेशिक काल और आजादी के बाद यानी स्वतंत्रोत्तर काल। कुछ अध्ययन इसे पुनः पूर्व आपातकाल तथा उत्तर आपातकाल में विभाजित करते हैं। भारत में प्रेस का अध्ययन। भारत में समाचार पत्र क्रांति हमेशा से शोधकर्ताओं के अध्ययन का विषय रहा है और विभिन्न एजेंसियों ने इस क्षेत्र में कार्य किया है। अधिकांश अध्ययन को दो भागों में विभाजित किया जाता है, पहला उपनिवेश काल और दूसरा आजादी के बाद का काल, जिसे स्वतंत्रोत्तर काल कहा जाता है। कुछ अध्ययन इसे पुनः पूर्व आपातकाल काल तथा उत्तर आपातकाल काल में विभाजित करते हैं। इसके अलावा भारत में समाचार पत्र पंजीयक RNI, नेशनल रीडरशिप काउंसिल ऑफ इंडिया NRCI तथा ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन कुछ ऐसे संगठन हैं जो नियमित रूप से भारत में समाचार पत्रों का अध्ययन करते हैं। भारत सरकार ने अब तक 2 प्रेस आयोग नियुक्त किए हैं, जिन्होंने भारतीय माध्यमों पर रिपोर्ट भी दी है, यानी कि इन दोनों प्रेस आयोगों ने भारतीय समाचार पत्रों पर पूर्ण रिपोर्ट दी है। हमारा दूसरा शीर्षक है भाषाई प्रेस की विभिन्नता। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान तथा पश्चात भारतीय समाचार पत्र पनपे और फैले। इसकी प्रसार संख्या में वृद्धि हुई तथा पाठक संख्या विस्तृत हुई। अन्य विकासशील देशों की तुलना में भारतीय प्रेस की वृद्धि उल्लेखनीय थी। अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त भारत में 100 से अधिक भाषाओं में समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। यद्यपि संविधान की 8वीं अनुसूची में मात्र 22 भाषाएं शामिल हैं। हमारा अगला शीर्षक है भाषाई समाचार पत्रों का प्रारंभिक विकास काल। क्षेत्रीय भाषाई अखबारों के प्रसार संबंधी रुझान के अध्येता नरेश खन्ना के अनुसार 1998 से 2000 के बीच 4 भाषाओं ने सर्वाधिक तीव्र वृद्धि दिखाई थी। ये हैं मलयालम, बंगाली, हिंदी और मराठी के अखबार। इसी बीच 7 भाषाओं के समाचार पत्रों या तो स्थिर रहे या उनकी प्रसार संख्या कम रही। इसमें तमिल, तेलुगु, उर्दू, उड़िया तथा कन्नड़ अखबार शामिल थे। मलयालम भाषा का दैनिक मलयालम मनोरमा, जो सन 1890 में प्रारंभ हुआ और 1980 के दशक तक भारत का सर्वाधिक प्रसार संख्या वाला दैनिक था, एक दशक से अधिक तक मलयालम मनोरमा ने यह स्थान बनाए रखा। एक केंद्र कोलकाता से होने वाले सर्वाधिक प्रसार संख्या वाला अखबार बंगाली में प्रकाशित आनंद बाजार पत्रिका रहा, लेकिन जब हिंदी अखबारों का विस्तार शुरू हुआ तो प्रसार संख्या में यह सभी भाषाई समाचार पत्रों से आगे बढ़ गया। संप्रति दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर दो सर्वाधिक प्रसार संख्या वाले दैनिक हैं, जिनकी पाठक संख्या 2 करोड़ से अधिक है। अधिकांश भाषाई अखबारों ने 1990 के दशक के उत्तरार्ध में प्रसार संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि प्राप्त की। नेशनल रीडरशिप सर्वे 2006 ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में समाचार पत्रों की पाठ संख्या इतनी तेजी से बढ़ी है कि यह शहरी क्षेत्रों की पाठ संख्या के बराबर पहुंच गई है। हमारा अगला शीर्षक है प्रसार तथा पाठ संख्या स्तर। आप अपने घर में कौन सा अखबार मंगाते हैं? यह अंग्रेजी का है या किसी अन्य भाषा का? आपके घर में कितने लोग अखबार पढ़ते हैं? क्या आपने देखा है कि आपके घर आने वाला एक अखबार 2 या 3 से अधिक लोग पढ़ते हैं? कुछ घरों में 5 या 6 लोग भी इसे पढ़ते हैं। आप यह भी जांचेंगे कि आपके पड़ोसी भी वही प्रति पढ़ते हैं। क्या आप कभी पुस्तकालय में गए हैं? वहां पर देखेंगे कि एक समाचार पत्र को बहुत से लोग पढ़ते हैं। इससे आप 2 विभिन्न पक्ष सीखते हैं, पहला एक समाचार पत्र का ग्राहक बनना और दूसरा इसकी पाठ संख्या। आपको जानना आवश्यक है कि यदि एक घर एक प्रति अखबार का ग्राहक है तो इसे पढ़ने वाले अनेक हो सकते हैं। इसीलिए यदि एक अखबार की प्रसार संख्या 1 लाख है तो वस्तुतः इसके पढ़ने वाले 5 लाख हो सकते हैं। आइए हम देखें कि समाचार पत्र प्रसार या पाठ संख्या की गणना कैसे होती है। भारत में 2 प्रमुख संस्थान हैं जो प्रसार संख्या व पाठ संख्या का रिकॉर्ड रखते हैं। पहला भारत के समाचार पत्र पंजीयक RNI और दूसरा द ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ABC। RNI भारत के समाचार पत्र पंजीयक RNI भारत सरकार ने 1956 में प्रथम प्रेस आयोग की अनुशंसा पर RNI की स्थापना की। एक संस्थान भारत में प्रेस की सभी गतिविधियों पर नजर रखता है। यह प्रतिवर्ष प्रेस इन इंडिया रिपोर्ट प्रकाशित करता है जो प्रसार संख्या के साथ पाठ संख्याओं के आंकड़ों की जानकारी देता है। वहीं दूसरा है ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन यानी ABC। यह एक गैर सरकारी संगठन है। इसकी शुरुआत 1948 में हुई जो प्रकाशकों तथा विज्ञापनकर्ताओं के संघ द्वारा स्थापित किया गया था। ABC ने नेशनल लीडरशिप स्टडी काउंसिल की स्थापना की जिसे एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया तथा इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी ने बनाया है। ये समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं व साप्ताहिकों की पाठ संख्या सर्वेक्षण भारत में 6 माह पर कराते हैं। ABC की वेबसाइट है www.auditbureau.org। आप यहाँ पे जाके इनकी हर 6 माह की रिपोर्ट देख सकते हैं। हमारा अगला शीर्षक है कुछ चिंताजनक रुझान, यानी कि भारत में भाषाई प्रेस के संदर्भ में चिंताजनक रुझान कौन कौन से हैं? तो पहला है मूल्य युद्ध। जी हाँ, विभिन्न समाचार पत्रों में मूल्यों की वृद्धि या मूल्यों की कमी एक चिंताजनक रुझान है, जिसमें एक अखबार अपनी सर्कुलेशन को बढ़ा सकता है और दूसरों के सर्कुलेशन को कम कर सकता है। इसके अलावा दूसरा है विज्ञापन आय पर अत्यधिक निर्भरता भी अखबारों के लिए अच्छा लक्षण नहीं है। भारतीय अखबारों में 50% से अधिक सरकारी विज्ञापन होते हैं। यह धन प्रोत्साहन समाचार पत्रों को सरकारी नीतियों की आलोचना ना करने को बाध्य करता है। इसके अलावा है गलाकाट स्पर्धा, पत्रकारिता के मूल्यों तथा नियमों के लिए भी घातक है। मीडिया की अति या मीडिया द्वारा ट्रायल के अनेक उदाहरण मिलते हैं। इसी प्रकार फर्जी स्टिंग ऑपरेशन, निजता का आपराधिक अति लंघन, अपराधियों तथा माफिया डॉनों को गौरवान्वित करना, समुदाय के बीच द्वेष बढ़ाना और गलत भावनाओं को प्रेरित करना कुछ अन्य चिंताजनक पक्ष हैं। और हमारा अंतिम जो शीर्षक है वह है भारत में भाषाई प्रेस का भविष्य। भारत तेजी से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इस वृद्धि का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि शहर तथा गांव के बीच का अंतर कम होता जा रहा है। वैश्वीकरण ने भी इस परिवर्तन को प्रेरित किया है। साक्षरता वृद्धि, अधिक शैक्षिक अवसर, औद्योगिक प्रगति, नव मध्य वर्ग के उद्भव, आधुनिक संप्रेषण पद्धति तथा वर्धित क्रय शक्ति सभी ने एक साथ भाषाई पत्रों की प्रसार संख्या बढ़ाने में सहयोग किया है। आशा है आज की चर्चा में आपको बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी और यह आपके लिए लाभान्वित भी होंगी। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।